ऋषम अमर्ष रोषावेश रभस विलसित भ्रकटिबिटप कुटिल दंष्ट्रा अरुणेक्ष अरुणेक्षण आटप अति भयानक वदना हन्तु कामम एवेदम महाअट्टहासम अति संग्रहवेण विमुञ्चति तता उत्पत्य पापियसं दुष्टानां तेनैव असीना विवृक्णश्रेष्ण गलात् श्रवन्तम् असृक् आसवम् अति उष्णम् सहगणेन निपीयातिपा निपिया अतिपाना मदविहला उच्चेहि उच्चैस्तरं स्वपार्षदेहि सह जगौ ननर्तच विजहार च शिरः कन्दुकलीलया। कंदू को गेंद को कहते हैं, गेंद बॉल। अनुवाद एवं तात्पर्य, शब्दानुवाद भी बहुत ज्यादा है, मैं अनुवाद और तात्पर्य पढ़ लेता हूं। किए गए अत्याचारों को न सहन कर सकने के कारण क्रुद्ध देवी काली ने अपनी आंखें चमकाई और उनके कराल वक्र दांत दिखाए। उनकी लाल लाल आंखें दहकने लगी और उनकी आकृति अति डरावनी हो गई। उन्होंने अत्यंत भयावना रूप धारण कर लिया, मानो समस्त सृष्टि का संहार करने को उद्यत है। वे बलि वेदी से तेजी से कूद पड़ी और तुरंत ही उन चोर और उच्चकों के सिर उसी तलवार से काट लिए जिससे वे जड़भरत को वध करने जा रहे थे। फिर छिन्न सिरों वाले उन उच्चकों और चोरों के गले से निकलने वाले गरम गरम ताजा रक्तों को पीने लगी, मानो मदिरा पान कर रही हो। दरअसल उन्होंने अपने गणों के सहित जिनमें डाइने तथा चुड़ैल थीं उस आसव का पान किया और फिर प्रमत्त होकर वे सब उच्च स्वर से गाने लगे तथा नाचने लगी, मानो समस्त ब्रह्मांड का संहार कर डालेंगी। उसी समय वे उनके सिरों को गेंद के समान उछाल उछाल कर खेलने लगी। तात्पर्य, भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी के इस श्लोक से स्पष्ट है कि देवी काली अपने सभी भक्तों का पक्ष नहीं लेती। देवी काली का कार्य ही असुरों को दंड देना और उनका वध करना होता है। देवी काली, जिसे हम दुर्गा कहते हैं, अनेक असुरों डाकुओं तथा समाज के बुरे तत्वों का शिरच्छेद करने में लगी रहती है। मूर्ख लोग कृष्ण भावना मृत की उपेक्षा करके देवी को प्रसन्न करने के लिए निकृष्ट वस्तुएं भेंट चढ़ाते हैं, किंतु अंत में पूजा में थोड़ी सी भी त्रुटि रह जाने पर इन उपासकों के प्राण लेकर उन्हें दंडित करती हैं देवी जी। आसुरी लोग भौतिक लाभ के लिए देवी काली की उपासनाएं करते तो हैं, किंतु पूजा के नाम पर किए गए पापों के लिए उन्हें क्षमा नहीं किया जाता। मूर्ति पर मनुष्य या पशु की बलि विशेष रूप से वर्जित है। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे नाम हरे नाम एव केवलम्। कलो नास्तेव 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 गतिर्यन्यथा। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन वृंदावन की ओर से हम आप सभी भक्तों का सादर स्वागत करते हैं और ये आशा भी करते हैं भागवत की इस विशेष प्रसंग को आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे और हृदय में धारण करने का प्रयास करेंगे। जो तात्पर्य और अनुवाद हम लोगों ने पढ़ा, कई भक्त लोग इस विषय को बढ़िया से जानते हैं और जो नवागत है, जो आज पहली बार आए हैं, तो उनको इनके विषय में शायद पता ना होगा। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कितने लोग नए हो, एकदम नए, थोड़े बहुत लोग हैं, एकदम नए हो, आज पहली बार आए हो वृंदावन पहली बार और भागवत क्लास में, कहाँ से हो आप? यहीं से, आगरा? हाँ, पास ही है। अच्छा, बाकी लोग सब पुराने हो? अच्छी बात है, पुराने लोगों से रिश्ता जमता है। अच्छा, सब भागवत का ये विशेष प्रसंग है। भागवत माने भक्तों की कथा है, एक एक भक्त का एक एक विशेष भाव है। पंचम स्कंध में अनेक भक्तों की कथा आपने सुना है और आगे सुनेंगे। ये जिस भक्त की कथा चल रही है उनका नाम है भरत महाराज। भरत महाराज, मैं नए लोगों के लिए 2-5 मिनट केवल भूमिका बना देता हूं। भरत महाराज एक महान राजा और महान गुरु, भगवान के अवतार ऋषभ देव के पुत्र थे। महान भक्त बने पिता के उपदेश से, आगे चल के कहीं ना कहीं कर्म गति, मन की गति इतनी जटिल हो जाती है तो भक्त कभी कभी किसी किसी समस्या में फंस जाता है। तो भरत महाराज पूरी जवानी में अपना राज्य का त्याग किया, युवती स्त्री का त्याग किया, अपने पुत्रों का त्याग किया, वन में गए, लेकिन भजन करते करते एक मृग छोना के प्रति उनके मन में आसक्ति आ गई, प्रेम बढ़ा, दिल उसी में ही लग गया। तो होता क्या है, जहां हमारा मन, जहां हमारी आसक्ति है, उसी की तरह धावमान होता है, दौड़ता है। आप लोग यहां बैठे हो लेकिन निश्चित रूप से हम यहां कह सकते हैं कई लोगों का मन यहां होगा, कई लोगों के मन यहां नहीं होंगे। अच्छा, आप विचार करके देखो आपके मन कहां होंगे, जहां आपके यार दोस्त और जहां जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो वहीं पर आपका मन होगा, राइट? किसी का मन तो आया है होली में, उसका मन होगा अरे यार मैं अकेले आया, उनको ले आता तो बहुत अच्छा रहता, पता नहीं घर में क्या कर रही होगी, ऐसा भी होता है। तो निष्कर्ष यही है कि मन वही होता है जहां पर किसी किसी की आसक्ति होती है, प्यार होता है, स्नेह होता है, संबंध होता है। तो मृग का वो मृग के बच्चे के प्रति भरत महाराज जी के मन में आसक्ति दिन पर दिन बढ़ती चली गई, और भजन के प्रति जो लगाव था वो दिन पर दिन घटता चला गया। एक तराजू है, उसमें इधर से सामान डालो तो इधर का पलड़ा ऊपर उठेगा, इधर पे कम करो तो ये वाला बट वाला नीचे जाएगा। तो अनुराग और विराग ये इस तराजू के दो पलड़े हैं, एक तरफ कृष्ण का अनुराग तो एक तरफ भौतिक संसार से विराग विरक्ति। तो जिस व्यक्ति के मन में कृष्ण के प्रति जितनी अनुरक्ति है उस व्यक्ति के मन में संसार के प्रति उतनी विरक्ति है। हमको विरक्ति लेने के लिए बहुत प्रयास करने की जरूरत है नहीं, शरीर में चमक लाने के लिए, शरीर को ताजा बनाने के लिए बाहर से फेयर लवली लगाने की बिल्कुल जरूरत है नहीं। आप बढ़िया से माखन खीर हलवा खाओगे तो चमक आपके गाल से निकलेगी, और वहां से कुछ नहीं है, आपका खाना नहीं पच रहा है, दिन में एक रोटी खाते हो, कितना भी फेयर लवली लगाओ क्या बनेगा, कुछ होना बनेगा। इसी तरह से मेरे मित्रों भक्तों, भरत महाराज जी के मन में जो आसक्ति थी भगवान श्री कृष्ण के भजन के प्रति, वो मृग छूना के प्रति आसक्त होने के कारण धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता पता नहीं चला कब गायब। अब दिन रात ये मृग का चिंतन करने लगे, भजन कम होता चला गया, अंततः एक दिन वो मृग छूना किसी मृग के झुंड के साथ भाग गया। कब तक रहता पशु जंगली जानवर, भरत महाराज जी को लगा ये तो मेरा प्राण प्राण का प्राण था, ये तो मेरा दूसरा ही प्राण था, हाय हाय हे विधाता तू कितना निष्ठुर है रे, कितना निर्दय है, तू मेरे बच्चे को मेरे से अलग कर दिया, हाय रे विधाता तुझमें दया की कोई गंध मात्र भी नहीं है। इस तरह से भरत महाराज अपने सर पटकते थे, पर इसी पर मृत्यु किसकी प्रतीक्षा अपेक्षा नहीं रखती, जब आना होता है वो आ जाती है। महाकाल आया और प्राण प्रयाण समय में भरत महाराज जी को मृग छूना का स्मरण आया, आहा कितना सुंदर सा था, टुकड़ू टुकड़ू देखता था, कान खड़े करके मेरी बात को सुनता था, जब मैं भोजन करता था मेरी थाली में आकर के नरम दरम जिह्वा से वो खाता था, मुझे कभी कभी चाटता था, मुझे कभी कभी चुम्मा देता था। बस इसी चिंतन में भरत महाराज जी के प्राण पखेरु उड़ गए और दूसरे जन्म में बना मृग। अंतकाले चमामी व स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। भगवान श्री कृष्ण की कही हुई गीता भरत महाराज जी के क्षेत्र में बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्रमाणित तो हो रहा है। अंतकाल में जो अंतिजामति सागति, भरत महाराज जी मृग शिशु मृग का शरीर धारण करने के पश्चात उनको भारी पश्चाताप हुआ। पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी रिपेंटिशन, गलती हो गई, पर अच्छे लोग और बुरे लोग में यही भेद है मेरे मित्रों। गुड पीपल रिपेंट, वो पश्चाताप करता है, अनुताप करते हैं, हाय हाय हमसे गलती हो गई, हे प्रभु ऐसी कृपा करो दोबारा हमसे गलती ना हो पावे। लेकिन बुरी लोग, बुरे लोग जो हैं, सूरदास जी कहते हैं सूरदास प्रभु कारी कमरो चढ़ियो न दूजो रंग, एक काली कंबल पर कितना भी रंग चढ़ाओ जैसे रंग नहीं चढ़ता, वो काला रंग चोखा बना रहता है, ऐसा ही इनका बुरापन इतना गहरा होता है, उनके भीतर पश्चाताप अनुताप कुछ भी नहीं होता, वही काम को बार बार करते हैं। पर भरत महाराज एक गुड सोल थे, बड़े दिव्य आत्मा, उनके भीतर तो पश्चाताप आना ही था, तो उन्होंने पश्चाताप किया, हे प्रभु मेरे पैरों में मैंने ही कुल्हाड़ी मारी थी, मैंने ही मृग शावक का चिंतन किया था, इसलिए हमारी यह दुर्गति हो गई, ये आगे नहीं होना चाहिए। इसलिए मृग के झुंड से वो अलग होकर के उस पुलहाश्रम चले गए। उस गंडकी नदी के तीर पर सूखी पत्तियां खा करके अपना जीवन बिताने लगे, समय की प्रतीक्षा करने लगे कब काल आएगा और ये शरीर छूटेगा। शरीर छूट गया, नेक्स्ट लाइफ में यानी कि तीसरे जनरेशन तीसरे जन्म में वो बने भरत। कैसा भरत? जड़ भरत। जड़ माने मूर्ख, जड़ मूर्ख को जड़ कहा जाता है। इनके पिताजी बड़े कर्मकांडी ब्राह्मण थे, इनके और बड़े बड़े भाई भी थे। आपको पता है जो कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं वो अपने बच्चों को भी कर्मकांड में ही निष्णात करना चाहते हैं। तो उनके पिताजी कहते थे देखो तुम्हारे भाइयों को देखो कितने बढ़िया बढ़िया शादी ब्याह किए हैं, बच्चे हैं, यज्ञ में जाते हैं, कितनी धन दौलत लेके आते, तू भी कर, तू भी कर। लेकिन भरत महाराज जी को बिल्कुल पूर्वजों की बात याद थी, नहीं नहीं नहीं, ये खतरे की घंटी है। वो पिताजी कितने भी पढ़ाते थे, बेटा आज ये गीता पढ़ ले, आज ये हवन का ये सूत्र पढ़ ले, कुछ ना कुछ तो करो, पर जड़ बन रहते थे, कुछ नहीं करते थे। अंततः तो पिता परेशान हो गए, बोले बेटा तू तो कुछ कर ना कर, भले ही थोड़ा गायत्री मंत्र जप ले। पर जब वो गायत्री मंत्र का उच्चारण करके फिर दोबारा उनसे पूछते थे भरत याद है तुमको मैंने क्या सिखाया था, भरत महाराज कहते हैं ओ पिताजी उस समय मैं देखता था चूहा कितना बड़ा बिल बनाया है। तो पिताजी कहते थे तो गायत्री याद कर रहा था या चूहे के बिल गिन रहा था, ये तो मैंने विनोद में कहा, वास्तव में उनका मन कहीं दूसरी जगह में होता था अथवा वो जानबूझ करके उसको नहीं ग्रहण करना चाहते थे। इसलिए पिताजी ने कहा तू जड़ है, तू मूर्ख है, जा तू से कुछ नहीं बनेगा। इस प्रकार से जड़ता में उनकी ख्याति हो गई। और आप लोग जानते हो जिनको भक्त बनना है वो अपने आप को इस प्रकार से प्रमाणित करे, कितने शिक्षा है कि संसार में अगर हम कृष्ण के भक्त बनना चाहते हैं अपने आप को संसार में नालायक घोषित कर दो। तुम्हारी पत्नी कहे ये बिल्कुल नालायक है, किसी काम का है, तुमको छोड़ना नहीं पड़ेगा, तुमको वो तलाक दे देगी। पिता माता जी के सामने बिल्कुल जड़बत बन जाओ, कछु ना भयो हमसे भाई। पिताजी कहेगा भाई तुमने इंजीनियरिंग नहीं करे तो डॉक्टर कर ले, अच्छा डॉक्टरी नहीं करी कम से कम बीएड कर ले, कम मास्टर की नौकरी के मिल जाए। लेकिन कुछ नहीं किया, बस खा करके अपने बॉडी भुलाने लगा। पिताजी गुस्से करके कहेंगे तू निकल जाए यहां से, पिताजी माँ जी आपको प्रमाण पत्र दे देंगे, बेटा जाओ तेरी मर्जी जो जहां घूमो, कितनी बढ़िया बात है। तो जड़ भरत ने यही सिस्टम यही नीति अपना ली, कुछ नहीं केवल खाते रहे, समय आया काल किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। पिताजी माताजी गुजर गए, अब बचे रहे उनके भाई भाभी। आप लोग जानते हो संसार कितना बढ़िया है, भाई लोग कहे चलो हम आठ हैं, एक हमारा नौवां भाई है तो खाता रहता है कुछ नहीं करता है, चलो कुछ तो नहीं करता है, खाता रहता है उनको खिलाए दिया करो। लेकिन घर में जो भाभियां होती हैं वो कैसे होती है, बोले कमाओगे तू और खाएगा ये, इस प्रकार करके उनको रोटियां नहीं देती थी। आटा पीसने के बाद जो भूसा बनता था उस भूसा से उसको रोटी बना के देती थी। लेकिन जट भरत जी बड़ी चाव से खाते थे, बड़े प्यार से खाते थे, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णव, चकाचक खाते थे भरत महाराज। उनका शरीर बड़ा मोटा तगड़ा हो गया। बेचारी भाभियां सोचने लगी अरे हमारे जो पति देव है इनको हम रोज मक्खन मिश्री दही खिलाते हैं, पर इनकी छाती तो 30 से 28 इंच हो गई, लेकिन इनको हम कुछ नहीं खिलाते, भूसा खिलाते हैं, पर इनकी छाती 56 इंच होती चली जा रही, भाई बात क्या है। लेकिन कुछ भी कहो जिनके मन में शांति है, भोजन चाहे कुछ भी करे ना वो बढ़िया लगता है। आप देखो घर के बगीचे में जो पौधा लगाते हो उसमें कितना भी सिंचाई करो, कितना भी कीटनाशक दो, वो 1.5 फीट से 2 फीट नहीं होता। लेकिन जंगल में जो पेड़ पौधा है उस पर कौन सिंचाई करता है, वो देखो 100-100 मीटर, सौ सौ मीटर पेड़ है। आप देखिए वृंदावन में कहीं इतने बड़े ऊंचा पेड़ है नहीं है। तो भगवान की कृपा जिस पर है तो वो ऑटोमेटिकल ऐसा ही होता है, चिंता नहीं, चाह नहीं, मनुआ बेपरवाह, वो बेपरवाह है, भगवान के सहारे जी रहा है, तो उनका शरीर सचमुच स्वस्थ हो जाता है। हमारे शरीर के बीमारी के पीछे सज्जनों कारण है हमारी चिंता है। आज की डेट में 99.9 लोगों को जो शुगर है इसके पीछे क्या क्या कारण है? हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन केवल उनको होती है जो भागवत कथा में नहीं आते, क्योंकि भागवत कथा तुम्हारी चिंता को मिटा देगी, तो टेंशन काहे को होगी। इस तरह से भरत महाराज जी के मन में जरा सी चिंता नहीं थी, वो बिल्कुल स्वस्थ कर रहे थे। भाभियां कुछ भी सोचे, पर दिन उनकी जुल्म बढ़ती गई। अंततः भाइयों ने भी देखा कि छोड़ा बहुत कुछ काम भी करना चाहिए, तो उनको खेत की रखवाली में छोड़ दिए। तो भरत महाराज देखे, देखो खेत की रखवाली बहुत अच्छा है, पर कई चिड़ियां कई पशु पक्षी आ रहे हैं तो खा रहे हैं। तो भाइयों ने कहा था, सुनो भरत, यहां पर मेड़ पर बैठे रहना, देखते रहना, कोई पशु आता है कोई पक्षी आता है। भरत महाराज के जी आज्ञा, जो जो आज्ञा भाई साहब। तो भाई उनको आज्ञा देके चले गए। तो पशु आए पक्षी आए, तो भरत महाराज कहते हैं, राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, क्या है वो? खाओ भर भर पेट। बोले, हे प्रभु, ये खेत तुम्हारी है, तुम खाने के लिए आ रहे हो, हम देखभाल करने वाले कौन है, आओ तुम खा के चले जाओ। भाई लोग आए, अरे करते हो क्या, ये जानवर तो सब फसल को उजाड़ दिए। भाई, आपने तो कहा था देखने के लिए, मैं तो देखता ही रह गया, मैं देखता ही रह गया। इस तरह से भरत महाराज किसी काम के लायक नहीं है, ये प्रमाणित कर दिए। तब भाइयों ने कहा, अब इसको रख के कोई फायदा नहीं है, जाओ तू चले जाओ। लेकिन इतना सा नहीं कहे, देखिए विधि का विधान क्या हो गया। ठीक है, भाइयों ने देखा क्या करे, इनको कुछ भी काम देते हैं कुछ करता नहीं है। ठीक है ठीक है, तू घर पे आने की जरूरत नहीं, वो मेड़ पे रहना, कोई खेत में रहना चाहिए। भरत माने, हाँ जी ठीक है हम रहेंगे रहें। एक दिन की बात है कि उस गांव के कुछ वृषल माने शूद्र लोग हैं जो तांत्रिक विधि से देवी पूजा करने वाले थे। किस लिए करते थे? धन दौलत के लिए। आज के जमाने में भी कई लोग श्री कृष्ण भजन को छोड़कर के यही काम करते हैं। तो एक ब्रसली पति माने शूद्र का पति जो ये तंत्र विधान अनुष्ठान करने वाला था, तो उनकी पूजा वो भद्रकाली की पूजा करता था। वैसे हमारे दुर्गा जी के कई नाम है, भद्रकाली, चंडिका, दुर्गा, कन्याकुमारी, शारदा, अंबिके, ये सब आप जानते हो। वहां पे काश में वहां पे कहां जाते दर्शन के लिए जाते हैं? वैष्णो देवी, चंडी देवी, यहाँ हिमाचल प्रदेश चले जाओ केवल चंडी का क्षेत्र है वो। नैना देवी यहाँ आपके इधर है, हाँ ज्वाला देवी, ज्वाला देवी, नैना देवी, सब देवी है। सब वो पूजक था और उस दिन रात को उनको बलि की आवश्यकता थी। तो बलि कैसे, बिल्कुल बलिष्ठ शरीर होना चाहिए, चकाचक होना चाहिए। तो उसने अपने दूत को भेजा, जाओ एक बढ़िया सा तगड़ा बलि देख करके लेकर आओ। चारों दिशाओं में उनके आदमी चले गए, तो देखा खेत पर एक बढ़िया सा आदमी बैठा हुआ है। वो लंबा तगड़ा गोरा सा है, चकाचक है, पर उनके जनेऊ नहीं थी, क्योंकि वो जनेऊ पसंद नहीं करता, गायत्री मंत्र हुई नहीं, अनुपेतम अपेत कृत्यम, उसका कृत्य ही नहीं हुआ, अपेत कृत्य रह गया। ब्राह्मण का संस्कार 7 वर्ष की आयु में हो जाना चाहिए, पर दुर्भाग्य है भारत का, शादी हो जाती है तब भी संस्कार नहीं हो पाता। कभी पंडित आकर कहता है, भैया शादी करोगे अब तो जनेऊ डाल दो। अब इसमें कई ब्राह्मण होंगे है कि नहीं, जिनका संस्कार अभी भी नहीं हुआ होगा, है कि नहीं? राघव, तुम्हारा संस्कार कब हुआ था? शादी के टाइम, देखो। इसलिए बड़ा ही दुर्भाग्य है। अरे भाई, सुखदेव गोस्वामी तो परम विरक्त थे, उनको संस्कार की कोई आवश्यकता नहीं है, पर हमको तो संस्कार की आवश्यकता है। 7 वर्ष की आयु में ब्रह्मचारी हो जाना चाहिए। वो ब्रह्म जनेऊ दिया जाता है। वामन भगवान तो पैदा होते ही उनका जन्म संस्कार और जनेऊ संस्कार हो गया था। सब भरत महाराज वो जड़ भरत को देख करके देखा ये बहुत अच्छा तगड़ा है, ये भद्रकाली के लिए बहुत अच्छा रहेगा, इनके पेट में शरीर में खून की मात्रा ज्यादा होगी, इसको ले जाते हैं। ले गए, आओ महाराज आओ, गले में सबसे पहले माला डाले। आपको पता है जो माला डालता है ना कुछ जो भक्त डालता है वो कुछ ना कुछ चाहेगा, माला ऐसे फ्री में कोई नहीं डालता। तो भरत महाराज के गले में माला डाल दिए, बढ़िया बढ़िया पूरी पकवान उनको खिलाए। भरत महाराज ने पूछा वाह बहुत दिनों के बाद आज हमको मिला, चलो हरि जय राम जी की। खा पी करके जब थोड़ा विश्राम कर रहे थे तो कोई ने किसी ने आकर बुलाया महाराज थोड़ा इधर को आ जाओ। बढ़िया कपड़े उनको पहना दिए, कुछ नहीं बोलते थे, जैसे जैसे जो भी दिया सो खा लिया, जैसे पहनाया वैसे पहन लिए। ले गए जहां पर बलि चढ़ाने के लिए वो जुआ थी, वहां पे ले गए। भरत महाराज ने कहा ये क्या है, इसीलिए तो आपको खिलाया था, अब यही बाकी है। देखा है कि भयंकर तलवार लेकर के उनका राजा खड़ा था। भरत महाराज ने कहा जो प्रभु जी ने हमको हलवा पूड़ी कचौड़ी खिला दी वही प्रभु की इच्छा है, अगर बलि चढ़ाना चाहते वो चढ़ा देंगे, उसमें क्या है, राम जी का ये देह है, राम जी ले जाएंगे, उसे हमारा क्या लेना देना है। ब्रह्म मुनि ज्ञानी थे वो, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा, न सोचती न कांक्षती, समम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभति परम। भगवत गीता अध्याय 18। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्या अहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। भगवान ने कहा गीता में, ये महावाक्य है। श्री कृष्ण ने कहा हे अर्जुन जो सर्वत्र मेरा दर्शन करता है मैं भी सर्वत्र उनका दर्शन करता हूं, वो भक्त मुझे नहीं छोड़ता फिर भला मैं कैसे उसे छोड़ सकता हूं। ये भगवान क्या, ये भगवान का वाक्य है। तो भरत महाराज ने कहा होई सोई जो राम रचि राखा, जो प्रभु की इच्छा है सो होगा। तो भरत महाराज शांत भाव में गए, जुआ में अपना अपने गला को लगा दिए। अब भरत महाराज को देख करके वो ब्रसली राज बड़ा प्रसन्न होता है, जय भद्रकाली कह करके जब तलवार उठाई भद्रकाली को सहन नहीं हुआ, तड़ तड़ करके वो प्रतिमा फट गई, विकराल रूप धारण करते ही भद्रकाली वहां प्रकट हो गई। और उसी के हाथ से तलवार खींच करके जितने वहां डाकू थे और शूद्र थे सबकी गर्दन उड़ा दी, और जैसे गर्दन उड़ी उनके गर्दन से ताजा ताजा खून का प्रभाव बहने लगा, गरम गरम खून है, गरम गरम रक्त। यहां श्लोक में लिखा गया है उष्णम आशवम, गरम गरम ताजा खून पीने लगी। केवल पिया नहीं, उस खून को पिया वैसे जैसे मदिरा मद्यपान करने वाले मदिरा का पान करते हैं, और जैसे मदिरा पान करने के बाद व्यक्ति उन्मत्त हो जाता है, ऐसे ही ये भद्रकाली अपने पार्षद चुड़ैल डायनों के साथ पान करके उन्मत्त नृत्य करने लगी। और इतना ही नहीं, उनके जो कट्टे सिर थे उन सिर को पैरों में ऐसे ही फेंक फेंक करके जैसे गेंद को खेलते हैं ना ऐसे खेलने लगी। सबकी एक पल में जो होने वाला था वो बिल्कुल उल्टा हो गया। कहां वो ब्रसलीपति भरत महाराज जी को बलि चढ़ाने आया था और स्वयं भद्रकाली के सामने बलि चढ़ गया। प्रभुपाद जी इस संदर्भ में कहते हैं देखो कई मूर्ख लोग होते हैं जो भगवान की भक्ति को परित्याग करके ऐसी ऐसी उपासना करते हैं, और जरा सी त्रुटि हो जाए तो फल बिल्कुल उल्टा हो जाता है। भद्रकाली ने आज अपने भक्तों को ही मारा। इसलिए सज्जनों मेरे भक्तों, देवा देवी की पूजा में यह खतरा बना रहता है, सदैव बना रहता है। आप सब कुछ अच्छा करो, जरा सी त्रुटि हो जाए, प्रभुपाद जी कहते हैं देखो इसका परिणाम बिल्कुल उल्टा हो गया। आप ये प्रसिद्ध कथा जानते हैं, पूरे नंद महाराज जी का खानदान इंद्र जी की पूजा करता आ रहा था, लेकिन एक बरस नहीं किया, तो क्या बिगड़ गया, क्या बिगड़ गया? ठीक है, नहीं किया। सबसे ज्यादा ईमानदार पशु कुत्ता होता है, सबसे ज्यादा बेईमान होता है इंसान, और उससे भी ज्यादा खतरा है देवता। आप देखिए, किसी कुत्ते को आप 20 दिन खाना खिलाओ, 21वां दिन मत खिलाओ, वो आपको त्यागेगा नहीं, काटेगा नहीं, वो पूंछ हिलाता हुआ फिर भी मालिक के पास आएगा। और इंसान को आप महीना भर, जिंदगी भर, अरे भाई क्या तक कहें, माँ पिता जीवन भर उस बेटे की सेवा करते हैं, जरा सी गलती होती है वो बेटा माँ पिता के गले में तलवार लगाने के लिए पीछे नहीं हटता। और बंदर और कृतघ्न है और दुष्ट होता है। और इंद्र ने प्रमाणित कर दिया, जीवन भर तो यज्ञ किए, एक साल नहीं किए तो क्या बिगड़ गया। उन्होंने बुलाया, संवर्तक जाओ, इस ब्रज को तहस नहस कर दो, सारे ब्रजवासियों को अपने गो संपत्ति के साथ नष्ट कर डालो। देखो क्या उत्पात है, ये कोई जेंटलनेस है, ये कोई भद्रता है? इसलिए भगवान ने कहा, कामैस्तैस्ते रतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। बोले जो मूर्ख होते हैं, अज्ञानी होते हैं, वे देवताओं की आराधना करते हैं, क्योंकि इन खतरों से वो परिचित नहीं होते हैं। आचार्य विश्वनाथ कहते हैं, भो राजन सर्वे धर्मा एव सभया दृष्टा भागवत धर्म एव निर्भया। हे राजन, ये संसार में जितने धर्म हैं, कर्तव्य हैं, सब में भय तो बिल्कुल मिला हुआ है। सर्वे धर्मा एव सभया, कुछ भी करो संसार में अब भय से मुक्त नहीं हो सकते हो। सर्वे धर्म एवं सभया दृष्टा, देखा गया है। ब्रह्मा की पूजा करने वालों के लिए भय है, जैसे हिरण्यकश्यपु है, कितनी चतुराई कही, हे प्रभु यहां नहीं मरूंगा, यहां नहीं मरूंगा, वहां नहीं मरूंगा, यहां नहीं मरूंगा, आकाश पाताल धरित्री अंदर बाहर आपके सृष्टि में किसी जीव के साथ नहीं मरूंगा। अंत क्या हुआ, भगवान ने कहा तू नहीं मरेगा तो कहां जाएगा। अर्जुन ने पूछा, प्रभु आप होते हो कौन, आपका परिचय दो। भगवान ने कहा, मेरा नाम कृष्ण तो सब जानते हैं, लेकिन एक बात मैं तुमको बताता हूं। बोले क्या है, बोले महाकाल। बोले मेरा नाम है महाकाल, कालोस्मि लोको क्षकृत प्रवृद्ध लोकान समाहर तुम यह प्रवृत्त अरे तेपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यनिके सुजोद्धा। हे पार्थ, तुम्हारे अतिरिक्त इस रणभूमि में कोई जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि मैं खाने वाला महाकाल इधर उपस्थित हूं। ये भगवान का परिचय है, मैं महाकाल। हिरण्यकश्यपु ने बहुत चतुराई करी पर कुछ नहीं हुआ, अंततः उसको प्राण से हाथ धोना पड़ा। भगवान शिव की आराधना करने वाला बाणासुर, क्या हालत हुई उसकी देखो। अंततः शिव जी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, प्रभु ये मेरा भक्त है, इसको छोड़ दो। तो प्रभु जी ने उनके 996 भुजाओं को काट डाला, 4 भुजाओं को छोड़ दिया। ठीक है, मेरे भक्त का तू भक्त है, इसलिए आई एक्सक्यूज यू, मैं आपको माफ करता हूं। अब भद्रकाली ने जो रक्षा करी, यहां सवाल उठाया आचार्यों ने कि भाई भद्रकाली तो रक्षा करी, आप कहे तो भगवान श्री कृष्ण ने रक्षा करी। हां, भगवान श्री कृष्ण ने ही रक्षा करी। क्यों, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा। घट घट में, घट घट में सबके भीतर प्रभु विराजमान है, सबके भीतर। तो जो व्यक्ति इन सभय धर्मों का परित्याग करके निर्भय धर्म का आश्रय करता है, भगवान जरूर उनकी रक्षा करता है। अब प्रश्न उठेगा, सभय धर्म निर्भय धर्म क्या है? भागवत जी गीताजी बताते हैं, दो धर्म है। एक धर्म है सामान्य धर्म जो समाज में आप देखते हो, और एक धर्म है परम धर्म। धर्म और परम धर्म, आप धर्म करिए उससे भय से आप मुक्त नहीं हो सकते। आप पिता माता की भक्ति करिए पर आपको मरना पड़ेगा। आप समाज की सेवा करिए, समाज वाले आपको गोली मारेंगे। मारेंगे कि नहीं मारेंगे? नाथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी की छाती को गोली से छल दिया था। कितने समाज सेवक हो गए, चले गए, लेकिन भगवान के भक्त को कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं। प्रहलाद जी पर कितना आतंक फैम दिया हिरण्यकश्यपु ने, कुछ नहीं हो पाया। इसलिए पिता माता की भक्ति, पति की भक्ति, पत्नी के प्रति श्रद्धा, समाज की सेवा, ये एक तरफ है, इसको कहते हैं सामान्य धर्म। लेकिन एक होता है परम धर्म। परम धर्म माने प्रभु की प्रीति, प्रभु की भक्ति, प्रभु की सेवा, इसको कहते हैं परम धर्म। परम धर्म को पाने के लिए जो व्यक्ति संसार धर्म का परित्याग करता है तो भगवान उनकी रक्षा करता है। ये भगवान का वचन, सब परिहरि, जो सब कुछ छोड़ छाड़ करके मेरी सेवा में आता है, मैं वचन देता हूं मैं उनकी रक्षा करता हूं। भगवान श्री राम ने कहा विभीषण से, शक्र देव प्रपन्नाय यस्तवास्मीति च याचते अभयम् सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद् व्रतम् मम। हे विभीषण, जो परिवार समाज को परित्याग करके मेरी शरण में आया है, ये मेरा व्रत है, मैं उनकी रक्षा करता हूं। ये मेरा व्रत है, ये मेरा नियम है। आप लोग जानते हो प्रसिद्ध घटना, जब श्री लक्ष्मण, जब राम वनवासी होने के लिए बात फैल गई, लक्ष्मण आए भैया के पास, बोले भाई मैं भी आपके साथ जाऊंगा। श्री राम ने कहा, लक्ष्मण पागल हो गए क्या तू, मैं वनवासी होते चला जा रहा हूं, पिताजी की आज्ञा है, मुझे वनवास लेना है, सीता जी जाएगी, मेरी अर्धांगिनी है, दो भाई आपके भरत और शत्रुघ्न अभी नहीं है, वो ननिहाल में है, मामा के घर इधर ही है, आप बताओ अयोध्या पर संकट आए तो संकट का सामना कौन करेगा, पिताजी दुखी हैं, अभी राज्य को चलाएगा कौन। देखने में तो बहुत बात अच्छी लगती है, अच्छी लगती कि नहीं लगती। श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण तुमको यही रहना चाहिए, अयोध्या को संकट से बचाना चाहिए। लेकिन हनुमान जी, श्री लक्ष्मण जी ने साफ मना कर दिया, गुरु पितु मातु न जाने हो को कहूं स्वभाऊं नाथ पतियाऊं। हे नाथ, हे प्रभु, ये मेरा स्वभाव है। क्या स्वभाव है, व्हाट इज योर नेचर। लक्ष्मण जी कहते हैं, गुरु पितु मातु न जाने हो को। हे भ्राता, भ्राता श्री, मैं ना तो गुरु जानता हूं, ना तो मां को जानता हूं, ना तो मैं पिता को जानता हूं, फिर तुम क्या जानते हो, किसको जानते हो। लक्ष्मण जी कहते हैं, ये मेरा स्वभाव है, कहे हूं स्वभाव नाथ प्रत्याओ, मेरी बात पर आप विश्वास करो, ये मेरी दिल की बात है, मैं किसी को नहीं जानता आपके सिवाय, मैं किसी को नहीं जानता। दोबारा कहते हैं, हे प्रभु आप अंतर्यामी हो, आप दीन दयालु हो, दीन दयालु और अंतर्यामी, आप सब कुछ जानते हो, सब कुछ जानते हो, मैं आपके सिवाय किसी को नहीं जानता। भगवान राम प्रसन्न हो गए, अब लक्ष्मण से कहते हैं, जाओ लक्ष्मण मां से आज्ञा लेके आ जाओ। ये है परम धर्म, पिता की सेवा, मां की सेवा, संसार की सेवा, ये जरूरी है, लेकिन ये सब भयजुक्त है, ये हमको अंततः मृत्यु के सामने से बचा नहीं सकते। कोई मां अपने बेटे की रक्षा नहीं कर सकती, अगर रक्षा करती तो हॉस्पिटल में जन्म देने के बाद कभी कभी वो मां सूनी गोद अपने घर वापिस आती है, उसका बालक, उसका लाल, वो हॉस्पिटल में ही खत्म हो जाता है, कहां रक्षा कर पाती है, ना पिता माता भाई बंधु कुटुंब कबेले, कोई नहीं रक्षा कर पाता। उस हाथी के माध्यम से भगवान ने दिखाया, गजेंद्र था, 1000 वर्षों तक लड़ा उस मगर से, उनकी हथनियां उनकी पत्नियां आई उनकी रक्षा करने के लिए, लेकिन उस मगर में इतनी ताकत थी, कुतः हरिण्य प्रभवंती मोचितुम, ये इस मगर के कब्जे से मेरी पत्नियां बेचारी मेरी रक्षा कैसे कर सकती। इसलिए मेरे मित्रों भाई बहनों, संसार में केवल एक हरि ही हमारी रक्षा कर सकता है, जैसे जड़ भरत की रक्षा भगवान ने की है। न कहरेचित मत पराशांत रूपे न क्षति नु में अनिमिषो लेड़ी हेती। भगवान ने कपिल ने अपनी मां से कहा, हे मां, जिसने मेरा आश्रय लिया है मेरा काल चक्र उसको मार नहीं सकता। कितने अभय वाणी है, कितनी आश्वासना है। संसार में चलने के लिए विचरण करने के लिए भगवान की वाणी हमें कितनी हिम्मत देती है। श्री कपिल भगवान कहते हैं, न करहि चित मत पराशांत रूपे। हे शांत रूपा, क्यों शांत? हर व्यक्ति आज अशांत क्यों? क्योंकि भगवान को छोड़कर के वो समाज का आश्रय किया है। लेकिन कपिल मुनि साक्षात अपनी मां से कहते हैं, क्योंकि उनकी मां का ध्यान ब्रह्म में मग्न हो चुका था, हे मां, न कहरिचित, कहरिचित माने कहीं से, और कुतश्चित माने किसी से। कवि ऋषभ देव के पुत्र कहते हैं, न कुतश्चित मन्ये, मैं मानता हूं कि जो व्यक्ति भगवान श्रीहरि का आश्रय में है उनको कहीं से डर नहीं होता। इधर भगवान कहते हैं, कहीं न कहरिचित, कहीं से भी नहीं होता, अर्थात देवता नर किन्नर यक्ष चारण गंधर्व चाहे कोई भी हो, पशु पक्षी किसी से भी मेरे भक्तों को डर नहीं होता, कहां तक है महाकाल से भी नहीं होता। प्रमाण बोले ध्रुव के पास महाकाल मृत्यु के रूप में आया, बोले प्रभु ये संसार का ये नियम है, जो भी उधर जाता है मेरे गेट होकर के जाता है। ध्रुव महाराज ने कहा, अच्छा यदि ऐसी बात है मेरे सामने तुम आओ। साक्षात मृत्यु महाकाल उनके सामने आती है और ध्रुव महाराज उनके सर पर कदम रख करके बैकुंठ चले जाते हैं। ये महाकाल पर जीत का एक दृष्टांत है ध्रुव महाराज। इसलिए कपिल मुनि कहते हैं, भगवान कपिल कहते हैं, न करहि चित मत पराशांत रूपे न क्षन्ति नो मे अनिमिषो लेडी हेती। हेती माने लेडी, हेती माने मेरा जो काल चक्र वो चाटता जाता है वो उनको नहीं चाट पाता। बोले किसको? येषाम् अहम् प्रिय आत्मा सुतश्च। बोले उन लोगों का, बोले जिन लोगों के मैं आत्मा हूं, अर्थात मुझे बहुत अधिक प्यार करते हैं, मैं उनका बेटा हूं, मैं उनका सखा हूं, मैं उनका सुहृद हूं, मैं उनका इष्ट हूं, मैं उनका दैव हूं। येषाम् अहम् प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृद दैवम इष्टम। इस प्रकार से भगवान ने अपना अभय योग बताया कि संसार में यदि कोई अभय पद को पाना चाहता है, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार बिंदरे दुर्लभ मानव जन्म सतसंगे तर होए भव सिंधुरे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन। हे मन, ओ माई माइंड, आप नंद नंदन का भजन करो। मन बहुत नहीं मानता, ये मनीराम जी के ऊपर विश्वास करना खतरे से खाली नहीं है मेरे मित्रों। भक्त वही है, सखा वही है, संसार में अपना हित करने वाला व्यक्ति वही है जो अपने मन से भगवान श्रीहरि का भजन करे। भगवान ने भी तो यही भाव कहा है, मयैव मनाधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। हे मानव, तुम अपने मन को सब ओर से हटा दे, सब जगह जहां जहां तुम्हारा मन है वहां से हटा करके मुझ में लगा दे, बस यही अभय पद को प्राप्त करने के लिए तरीका। तो जड़भरत के उपाख्यान में इस प्रसंग का निष्कर्ष यही है, यद्यपि भद्रकाली के सामने ये बलि के रूप में उपस्थित हुए थे ब्रह्म ज्ञानी मुनिंद्र जड़भरत जी महाराज ब्रह्म बेता, पर काली के हृदय में भगवान ने ही उनकी रक्षा करी। तो संसार में देखा जाता है, इसके उदाहरण से हम भक्तों को सीखना चाहिए कि सभी सब परिहरी करे मोर सेवकाई, सब कुछ परित्याग करके सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। अच्छा एक बात बताओ, जो प्रभु जड़भरत की रक्षा करी, क्या हमारी रक्षा नहीं करेगा? नहीं करेगा क्या? हम उनके दुश्मन हैं? अरे प्रभु, उन्होंने ध्रुव की रक्षा करी, प्रहलाद की रक्षा करी, सबकी रक्षा करी, जड़भरत की रक्षा करी, तो हमारी रक्षा उनको करना होगा, वो करेगा, पर शर्त क्या है? जैसे जड़भरत है, गुरु पितु मातु जान ही नहीं को, मैं किसी को नहीं जानता, हे प्रभु आप अंतर्यामी हो, आप सबको जानते हो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव त्वमेव सर्वम मम देव देव त्वमेव सर्वम मम देव देव त्वमेव, आप ही मेरी माँ हो। ध्यान देना, ऐसा नहीं कि यहां राधा रानी से को त्वमेव माता, वहां जाकर मम्मी से कहो त्वमेव माता, नहीं, यहां एव शब्द का प्रयोग, आप ही मेरी, आप हिंदी भाषा भाषी हो, आप जानते हो भी और ही में अंतर क्या है? भी माने ये भी खाऊंगा, इसको भी खाऊंगा, गंगा जी में भी नहाऊंगा, यमुना में भी नहाऊंगा, कृष्ण की कथा भी करूंगा, देवी पुराण भी करूंगा, ये भी वाला काम नहीं चलता भाई, ये सुदामा जी की पोटली वाला काम है, सुदामा पहले अपने बगल से पोटली निकालो फिर मेरा धन ले लो, ये नियम है। सब कुछ परित्याग करके जब हम प्रभु के पास आते हैं, हजारों प्रमाण है, द्रौपदी सबकी आशा सबका भरोसा छोड़ दिया और देखो क्या कमाल हो गया, करिश्मा एक पल में वातावरण बदल गया, खेचत दुशासन थक्यो, वो 10,000 हाथियों का बल रखने वाला उस दुष्ट दुर्योधन का महादुष्ट भाई दुशासन खींचते खींचते परेशान हो गया, थक हार करके शर्म के मारे बैठ गया, बोला भाई और नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, ये भगवान की कृपा है, अनुकंपा है, ये दया है। इसलिए जो प्रभु जड़भरत की रक्षा करते हैं, जिस प्रभु ने प्रहलाद का उद्धार किया, जिस प्रभु ने उस मृग का उद्धार किया, जिस प्रभु ने पांडवों का उद्धार किया, जिस प्रभु ने हजार हजार भक्तों की रक्षा की, वो प्रभु अवश्य हमारी रक्षा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। एनी क्वेश्चन, कोई प्रश्न है, कोई भी सवाल कर सकते हैं, जो प्रसंग पर हमने चर्चा की, यदि आपके मन में कोई शंका संदेह अथवा कोई हमारी गलती है तो आप कहिएगा। यस, एनी क्वेश्चन, नो क्वेश्चन। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, महाप्रसाद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि वो, जय जय श्री राधे श्याम। वृंदावन।